الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو ان آیات جو ابھی تلاوت کی گئیں، آیات نمبر 15 سے 21 تک سورہ انعام کی، ان کی ہم تفسیر معرف القرآن جلد نمبر 3 سے پڑھ رہے ہیں. کل ہم نے خلاصہ تفسیر پڑھ کے مکمل کر لی تھی ان کی، اور آج معارف و مسائل پڑھنے میں شروع کر رہے ہیں پیج نمبر 293 کے اوپر سے. تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کے معارف و مسائل میں لکھتے ہیں کہ پچھلی آیتوں میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کا ذکر کر کے اس پر ایمان لانے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا. اللہ پر ایمان لانے اور شرک سے بچنے، کیا مطلب اللہ پر ایمان لانے؟ یعنی جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی مطلق اطاعت کے لائق نہیں ہے. ایسے اللہ پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، ایسے اللہ پر ایمان لانا، اس کی دعوت دی جا رہی تھی پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر کر کے. یہ قدرت کاملہ بھی کون ذکر کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے الفاظ کو استعمال کر کے، ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ یہ تم کہو، ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں، اور کوئی دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سائیڈ میں بیان کرے چلے جا رہا ہے، سائیڈ میں بیان کرے چلے جا رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سائیڈ میں جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ تم کہو، لا الہ الا اللہ تم کہو. نہیں، قدرت کاملہ بھی اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی بیان فرما رہے ہیں. یہ قرآن کس کی زبان پہ نازل ہوا، کس کی زبان سے انسانوں نے سنا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے. وہی قدرت کاملہ بھی بیان کر رہے ہیں، اور وہی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ذرا پکچر کر کے نا ہم تھوڑا سمجھیں کہ ایمان اور صحابہ کا ایمان یہ کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیسا اعتماد تھا. ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کے سامنے ادھر سے ایک جن صاحب آ رہے ہیں، رائٹ، ایک جن آ رہا ہے، ادھر سے ایک فرشتہ آ رہا ہے. یہ جن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ بیان کر رہا ہے، وہ فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ بیان کر رہا ہے، اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں سن لیا نا تم نے جن کی بات، تم نے جو ہے وہ فرشتے کی بات سن لی نا، اب جو ہے تم میری بات مان لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو. کیا خیال ہے؟ سوچیں ذرا اس بات کو، ٹھیک ہے، اس کو پکچر کریں ذرا. کیا ایسے ہوتا تھا؟ کیا ایسے ہوتا تھا کہ پہاڑوں میں سے آوازیں آ رہی ہیں اور جو ہے وہ پھر وہی وائس از بریکنگ چلیں فون پر ہی کرتے ہیں، پھر موبائل کا سلسلہ جائے گا نہیں، یہ سوری لیپ ٹاپ کا سلسلہ جو ہے نہیں چل رہا.
In progress.
ऐसा नहीं था, नबी अलैहिस्सलाम ही, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ही जो है वो ये सारा कुछ पूरा का पूरा पैकेज जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ही लेकर के आए थे, और सहाबा कराम जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ही के ऊपर ईमान लेकर के आए थे, उन्हीं पर एतमाद करते थे, ठीक है ना। तो उसमें से अगर कोई कहता था कि नहीं मैं तुम्हारी क्यों मानूं, मैं अल्लाह की मानूंगा, ठीक है, मैं अपनी अल्लाह की मानूंगा, या जो है वो मैं अपने अल्लाह की वैसे इबादत करूंगा जैसे मेरे बाप दादा ने कहा है, राइट, मेरे मम्मी डैडीज, राइट, वो हमारे एक हैं मुफ्ती साहब, वो इस तरह की बात है, सुनने थी उनसे, तो वो मेरे बाप दादा ने कहा है कि अल्लाह की इबादत ऐसे करनी है कि साइड में जो है वो लात को भी रखना है, मनात को भी रखना है, और जो है वो इस तरीके से हज करना है और उस तरीके से नहीं करना है, ये करना है वो करना है, तो फिर वो क्या था, वो काफिर था, वो इनकारी था, ठीक है, वो हमेशा हमेशा की जहन्नुम का मुस्तहिक बन गया, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम को स्किप करके, नबी अलैहिस्सलाम के लेवल को, नबी अलैहिस्सलाम का जो जो स्टेपिंग स्टोन था, स्टेपिंग ये स्टेप था ना, इसको स्किप करके कि मैं डायरेक्ट अल्लाह ताला की, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट अल्लाह ताला से जुड़ूंगा, मैं अल्लाह ताला को राजी करूंगा, जैसे मेरे समझ में आएगी बात वैसे मैं करूंगा, तो वो फिर हमेशा हमेशा की जहन्नुम का मुस्तहिक बन गया। और सहाबे कराम जो सबसे आला जन्नतों के मुस्तहिक बन गए, वो किस लिए बन गए, क्योंकि उन्होंने इस स्टेप को जो है वो स्किप नहीं किया, उन्होंने इस स्टेप को स्किप नहीं किया, ठीक है। इबादत नबी अलैहिस्सलाम की इन्होंने भी नहीं की, ये नहीं कि इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को खुदा मान लिया, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से ही दुआएं मांगनी शुरू कर दी, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के ही सामने सजदा करना शुरू कर दिया, नहीं, ये काम तो सहाबा ने भी नहीं किया। लेकिन अल्लाह कैसे राजी होता है, अल्लाह कैसे नाराज होता है, किस वजह से नाराज होता है, ये किससे सीखा, नबी अलैहिस्सलाम से सीखा, ठीक है ना। नबी को मुअल्लिम बना करके भेजा गया था, उनकी बातों को गौर से सुना, तवज्जो से सुना, और जो है वो आपस में दोहराई भी करी, यानी तकरार सेशंस भी होते थे सहाबा कराम के। क्या मतलब तकरार सेशंस होते थे सहाबा कराम के, आपस में मिल करके बातें किया करते, नबी अलैहिस्सलाम की डिस्कशंस के ऊपर, नबी अलैहिस्सलाम के खुतबों के ऊपर, आपस में की तालीमात के ऊपर, एक दूसरे को सिखाते भी थे, रिमाइंडर्स भी करते थे, ठीक है। और जो है वो जो बात समझ में नहीं आती तो नबी अलैहिस्सलाम से पूछते भी थे कि आपने ऐसी बात फरमाई थी, ये मेरे समझ में नहीं आई, तो अब आप इसको समझा दीजिए, आप इसको बता दीजिए, मेरे समझ में नहीं आई ये वाली बात, ऐसे नहीं कि मैं इसको ऐसे सम मैं ऐसे समझ समझता हूँ इस बात को, आपने ये बात कैसे कर दी, राइट, ये बात तो ऐसे होनी चाहिए थी, आपने ऐसे क्यों कर दी, इस तरह से नहीं सवाल करते थे, राइट, अपने जो है ना वो पहले से प्री मेडिटेटेड ख्यालात को जो है ना नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर समझ रहे हैं कि जी वो ज्यादा सही ख्यालात थे, बल्कि एक तमीज तरीके से सवाल पूछा करते थे, और इस तरीके से उनका इल्म बढ़ता था, समझ ज्यादा बढ़ती थी कि अल्लाह ताला को कैसे राजी करना है, और फिर उसके ऊपर वो अमल भी करते थे, अमल करने की भी कोशिश करते थे, अल्लाह ताला उनको तौफीक भी दिया करते थे फिर अमल करने की, ठीक है। तो सुनना, तलब के साथ सुनना, ये तौफीक इसके ऊपर डिपेंड करती है, जो तलब से सुनता नहीं है उसको तौफीक नहीं मिलती है अमल करने की, ठीक है। तो पिछली आयतों में अल्लाह जल्ला शानों की कुदरत कामिला का जिक्र करके उस पर ईमान लाने और शिर्क से बचने का हुक्म दिया गया था। आयात मस्कूरा में से पहली आयत में उस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने का अजाब एक खास अंदाज से बयान फरमाया गया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कह दीजिए कि अगर बिलफर्ज मैं भी अपने रब के हुक्म की मुखालफत करूं तो मुझे भी कयामत के अजाब का खौफ है, ठीक है, मुझे भी कयामत के अजाब का खौफ है। ये जाहिर है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गुनाह से मासूम है, नबी को अल्लाह ताला ने मासूम बनाया है, ठीक है भाई, नबी ने ये काम करना है, पूरी दुनिया को हिदायत का जो है वो काम करना है, तो नबी की जरूरत है कि उसको मासूम बनाया जाए, नबी ही अगर गुनाह का मुर्तकिब होना शुरू हो जाएगा तो फिर वो आगे किस मुंह से लोगों को बुलाएगा और किस वजह से लोग जो है वो उसकी बात को मानेंगे, अगर नबी ही जो है वो गुनाह करना शुरू हो जाएगा, इस वजह से मासूम बनना कोई ऐसा नहीं एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे दी उनको, दे दी मुझे क्यों नहीं दी, राइट, उनको दे दी मुझे क्यों नहीं दी, अब मेरा क्या कसूर, भाई आपको थोड़ी पूरी दुनिया के अंदर हिदायत का काम करने के लिए भेजे गए हैं। आपको थोड़ी जो है वो सारी दुनिया का बोझ अपने कंधों के ऊपर उठा करके भेजे गए हैं। आपके ऊपर तो ये बोझ है ही नहीं, तो आपको क्यों मासूम बनाया जाए, राइट? यानी जिसको फॉर एग्जाम्पल कोई आपको दुश्मन के मुल्क में भेज रहा है, मिलिट्री पर्सनल है ना, कि भाई आप जाकर के अंदर जो है ना वो उनके सफों में घुस करके जो है वो उसको नुकसान पहुंचा करके आए, तो अब उसको जो है ना वो एक्स्ट्रा आर्मर पहना करके और उसको जो है ना वो बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग दे करके और बेहतरीन जो है ना वो उसको हथियार दे करके दुश्मन के मुल्क में रवाना किया गया, क्योंकि उसने काम ही इतना मुश्किल करना है। तो अब जो है ना वो अपने मुल्क में बैठे हुए लोग कहें कि भाई दुश्मन की गोली तो यहाँ भी आ सकती है, तो मुझे क्यों इतना सारा आर्मर क्यों नहीं पहनाया गया, मुझे ये सारी हिफाजती जो है ना वो चीजें क्यों नहीं सिखाई गई, और मुझे जो है वो ये सारी चीजें जो है वो क्यों नहीं दी गई, उन साहब को क्यों दी गई? वो भाई अल्लाह के बंदे उसको इसलिए दी गई है क्योंकि वो दुश्मन के सफों के अंदर भेजा गया है। तुम अपने घर के अंदर बैठे हुए हो, हाँ ठीक है गोली आके तुम्हें भी लग सकती है दुश्मन की, कोई मिसाइल जो है वो तुम्हारी तरफ भी आ सकता है, लेकिन उसका एहतमाल कितना कम है, क्योंकि तुम तो अपने घर में बैठे हुए हो, तुम तो अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है? तो नबी को मासूम बनाना इस वजह से, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ये नहीं कि भाई हाँ भाई वो बस वो खास थे तो इस वजह से, भाई वो काम ही ऐसा कर रहे हैं, सही है? तो नबी से तो फिर गुनाह का कोई मुमकिन ही नहीं, क्योंकि उनको मासूम बनाया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाफरमानी का सुदूर ही नहीं हो सकता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके उम्मत को ये बतलाना है कि इस हुक्म की खिलाफ वर्जी पर जब नबी अलैहिस्सलाम नबीयुल अंबिया को मुआफ नहीं किया जा सकता, तो और किसी की क्या मजाल है हुक्म की खिलाफ वर्जी के ऊपर। जब नबीयुल अंबिया को जो है, यानी अंबिया के भी जो इमामुल अंबिया हम जिसको जिनको ज्यादा हमारे यहाँ टर्म समझी जाती है, इमामुल अंबिया को जो है वो सजा हो सकती है, क्योंकि खौफ किस बात का होता है कि हो सकता है ना ये वाला मामला, ठीक है ना, अगर से करना नहीं है लेकिन खौफ तो है, अल्लाह ताला तो बेनियाज है, ठीक है? तो हम ये समझते हैं कि जी गुनाह से कुछ नहीं होता, और जो कुछ होता है उसका गुनाह से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों तरफ हमारा मसला है, ठीक है? कि एक तो हम गुनाह करते हुए ये समझते हैं कि कुछ नहीं होता, और दूसरा ये कि जो हमारे ऊपर हुआ हुआ है, हमारे ऊपर कमबख्तियां, हमारी बदबख्तियां, हमारी जिल्लतें, हमारी तजलील, हमारी जो है वो औलादों के हाथों पिटना, और दूसरे उस किस्म के जो सारे के सारे मसाइल हमारी जिंदगी में जिल्लत और रसवाई के हुए हुए हैं, मुसीबतों के हुए हुए हैं, उनका गुनाह से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो बस ऐसे ही हो रहे हैं, बल्कि मेरी आजमाइश के लिए कोई जो है वो कोई उसको समझ रहा है कि मेरी आजमाइश के ये फल मुझे मेरे दर्जात बुलंद हो रहे हैं। बहुत पहले जो है वो क्लास में इस तरह की एक बात करी थी, तो हमें किसी ने जो है ना वो एक व्हाट्सएप के ऊपर तस्वीर भेजी, ठीक है ना, वो एक एक मेन्यू एक इमेज था दरख्त का, आम के दरख्त का, ठीक है, और उस आम के दरख्त के ऊपर जो है ना वो इतने आम लगे हुए हैं कि दरख्त के पत्ते भी नजर नहीं आ रहे, ठीक है, इतने आम लगे हुए थे फल के दरख्त के पत्ते भी जो है वो उसके पीछे छुप गए थे, और उसके नीचे टाइटल बड़ा मजे का था, टाइटल क्या था कि मेरी मेरे सबर का फल, राइट, मेरे सबर का फल, ये है मेरे सबर का फल, मैं इतना सबर करती हूँ, क्योंकि वो खवातीन की क्लास भी थी, ठीक है, मैं इतना सबर कर रही हूँ, मेरे ऊपर आजमाइशें आ रही हैं, और मैं इतना सबर करती हूँ कि मेरा जो फल है ना वो इतना फल है जितना इस आम के दरख्त के ऊपर लगा हुआ है, इन्नमा युवफ्फा सबिरून अजरहुम बगैर हिसाब, ये आयत मेरे लिए तो उतरी है, अल्लाह ताला बिला हिसाब जो है वो अजर देते हैं, किस बात के ऊपर सबर कर रही है, कैसे सबर कर रही है, नहीं ये नहीं, ये तो सीखना ही नहीं है, ये तो पूछना ही नहीं है, ठीक है ना, कि आप सबर कर रही हैं कि आप जो है वो मुश्किलात पे सबर कर रही हैं कि आप जो है वो गुनाहों पे सबर कर रही हैं, यानी गुनाहों पे आप बड़ी इस्तकामत के साथ जमी हुई हैं, अल्लाह की नाफरमानी पे और अपनी हठधर्मी के ऊपर बड़ी इस्तकामत के साथ जमी हुई है, कि आप इसको सबर समझ रही हैं जिसके ऊपर आपके ख्याल में जो है वो आपको फल मिले चले जा रहे हैं, ये तो हमारा इस वक्त सोच बनी हुई है, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गुनाह के ऊपर अजाब, ठीक है, अल्लाह की नाफरमानी अल्लाह के अजाब से जुड़ी हुई है, सिवाय इसके कि हम तौबा करके इसको अलग करें अल्लाह के अजाब से, वरना ये अलग नहीं होती। इसके बाद फरमाया मैं युसरफ अनहु यौम इज़िन फ़क़द रहिमा, यानी रोज महशर का अजाब इंतहाई हौलनाक और सख्त है। जिस शख्स से ये अजाब टल गया तो समझिए कि उस पर अल्लाह की बड़ी रहमत हो गई। ठीक है, युसरफ यानी उसको फेर दिया गया उस बंदे के ऊपर से, तो वो बड़ी रहमत हो गई, यानी ये बच गया ये ना। इसके ऊपर तर्जुमे के दौरान काफी बात हो चुकी थी, फहरहाल आगे चलते हैं। जिस शख्स से ये, अच्छा, वजालिकल फौजुल मुबीन, यानी यही बड़ी और खुली कामयाबी है। यहां कामयाबी से मुराद दुखूले जन्नत है। अल फौज अल मुबीन यानी अल्टीमेट कामयाबी, वो क्या है? दुखूले जन्नत। इस दुनिया के अंदर जो कामयाबियां मिल रही हैं तो ये तो इम्तिहान गाह के अंदर की कामयाबियां हैं, ये असल कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी तो जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे उस वक्त मिलेगी। इससे मालूम हुआ कि अजाब से निजात और जन्नत का दाखिला लाजिम व मलजूम है। ठीक है, यानी दरमियान की कोई जगह नहीं है। जो आराफ है ना, आराफ, सूरह आराफ पूरी की पूरी कुरान मजीद की आयत है, वो किस चीज के बारे में है? वो है एक मुकाम के बारे में जो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान है, जन्नत और जहन्नुम के दरमियान है। लेकिन ये आराफ का मुकाम ये नहीं है कि कोई थर्ड ऑप्शन है, ये नहीं, ये थर्ड ऑप्शन नहीं है, ये एक टेम्पररी लोकेशन है, टेम्पररी प्लेस है ये। ठीक है, जहां पर के जिनको जहन्नुम से बचा दिया जाएगा वो उस वक्त तक स्टेशन होंगे कि जब तक कि उनके जन्नत में दाखिले का फैसला नहीं हो जाता, यानी उन्होंने जन्नत में ही जाना है। ठीक है, तो दो ही ऑप्शन हैं, या जहन्नुम या जन्नत, और कोई तीसरी जगह है ही नहीं। तो जब जहन्नुम से निजात मिल गई तो जन्नत का दाखिला लाजम लाजम है। ठीक है, तो कुरान मजीद हमें इस तरीके से बार बार तवज्जो उस तरफ मबजूल कराने की दावत देता है, मबजूल करने की, यानी अल्लाह की तरफ और अल्लाह के सवाब जो जन्नत में मिलना है उसकी तरफ। ठीक है, जिन लोगों ने सुना था उन्होंने तो उम्मीद है कि उनको याद होगा, कुछ जहन में होगा, जिन्होंने नहीं सुना था तो वो भी सुन ले, क्योंकि है ही इतनी अहम चीज ना, कि इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक तालिबे इल्म एग्जाम देने के लिए किसी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठता है, ठीक है, और वहां पर जो है वो पर्चा हल कर रहा है। अब इस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर दूसरे लोग भी होते हैं, टीचर्स होते हैं, इन्विजिलेटर्स होते हैं, तो उनमें से कोई इन्विजिलेटर जो है वो अपने जो डेस्क है ना, सामने डेस्क होती है उनकी, उसके ऊपर बैठे होते हैं। ये पाकिस्तान का एक टिपिकल एग्जामिनेशन हॉल ऐसे ही होता है, वैसे शायद और जगहों पर भी ऐसे ही होता होगा। तो वो बैठा हुआ है, उसने अपनी टेबल के ऊपर जो है वो पेप्सी का ग्लास रखा हुआ है। ठीक है, अब ये तालिबेन जो है ना वो पेप्सी का दीवाना है, बेबसी है उसके लिए ये पेप्सी। ठीक है, अब तो शायद बायकॉट वायकॉट करता होगा, लेकिन अब जो है वो क्या नाम है उसका, किंजा, किंजा उसकी बेबसी है। तो वो उसको देखे चले जा रहा है कि भाई मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। ठीक है, और अगर मुझे ये मिल जाए ना तो फिर तो मुझे कामयाबी हासिल हो गई, मैं जो हूँ ना वो इम्तिहान का पर्चा वगैरह जो है वो सबमिट करवा दूंगा उसके बाद, और मैं चला जाऊंगा बाहर के, भी मुझे तो ये पेप्सी मिल गई, मेरे तो मकसूद ये पेप्सी है। ठीक है, जो कि इम्तिहान गाह के अंदर सामने पड़ी हुई है। तो अब जो है ना वो इन्विजिलेटर साहब उसकी ललचाई हुई नजरों को देखें, उनके पेट में दर्द हो शुरू होना शुरू हो जाए, वो कहें कि भाई अगर मैंने इस पेप्सी को पी लिया ना तो ये तो इस पे तो इसकी नजर लग गई है, इसके बाद तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। तो कहते हैं यार मैं इस पेप्सी को जो है ना इसी के हवाले कर देता हूँ। है, इतना ललचाई नजरों से देख रहा है, इतना इसके फोकस जो है ना वो इस पेप्सी के ग्लास के ऊपर है। तो मुमतहिन ने फैसला किया कि पेप्सी का ग्लास जो है ना वो इस बच्चे के हवाले कर दें। अब बच्चे को जब पेप्सी मिल गई, ओ हुर्रा, मैं तो कामयाब हो गया, मुझे तो अपना मकसद हासिल हो गया, बड़ा खुश, बड़ा खुश। ठीक है ना, और उसके बाद जो है ना वो उसने इम्तिहानी पर्चे की तरफ से जो है अपनी तवज्जो हटा ली और जो है वो पेप्सी पिए चला जा रहा है। और फिर अगर उसको इजाजत मिलती नहीं है बाहर निकल, होता है ना कि भैया अभी आप 3 घंटे पूरे होने से पहले आप बाहर नहीं निकल सकते, बाहर तो आप उसी वक्त निकलेंगे जब 3 घंटे या 4 घंटे जो इम्तिहान के हैं वो पूरे हो जाएंगे, तभी आप बाहर निकलेंगे, उससे पहले आप बाहर निकल नहीं सकते। तो अब ये बैठा हुआ है खाली इस वजह से कि भाई जब 4 घंटे पूरे होंगे तभी बाहर निकलूंगा, मजबूरी है, वरना मुझे कोई, मेरा कोई मकसद नहीं है यहाँ पे इम्तिहान में बैठने का और जो है वो पर्चा हल करने। ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो पेप्सी मिल गई, मेरा तो मकसद पूरा हो गया। तो अब इस बच्चे का क्या क्या मामला होगा कि जब एग्जाम के रिजल्ट निकलेगा तो उस वक्त जो है ना वो इसके बहुत ही बुरे हालात हुए होंगे। ठीक ठीक है, क्योंकि इसने अब तक भी जो पर्चा सॉल्व किया था ना, अब ये भी बात याद रखें, एक तो ये कि अब पेप्सी का ग्लास मिलने के बाद इसने मजीद पर्चा हल करना छोड़ दिया, तो उसको तो इसको 0 मार्क्स मिलेंगे बाकी पर्चे के, क्योंकि उसने वो लिखा ही नहीं है। लेकिन इवन उससे पहले भी जो उसने पर्चा लिखा था, ठीक है ना, उससे पहले भी जो उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो वो भी जो वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो उसकी तवज्जो तो पेप्सी के ग्लास के ऊपर मरकूज हुई हुई थी, राइट? तवज्जो तो उसकी पेप्सी के ग्लास के ऊपर थी कि मुझे ये मिल जाए तो मेरा मकसद हल हो जाएगा। तो उसने क्या क्या क्वालिटी दिखाई होगी अपने उन आंसर्स के अंदर जो उसने लिखे हैं पेपर के अंदर, तो किस किस्म के उसने आंसर्स लिखे होंगे? जाहिर उसकी तवज्जो तो थी ही नहीं इसके ऊपर, उसकी तो प्रायोरिटी ये थी नहीं कि मुझे आखिरी दिन में इनाम दिया जाए, मैं ऐसा पर्चा करूं कि मुझे आखिरी दिन में बेहतरीन इनाम मिले, उस तरफ तो उसकी तवज्जो ही नहीं थी। तो इसका मतलब क्या क्या है कि इवन दुनिया, इवन जो इम्तिहान गाह में इसको इनाम मिला है पेप्सी का, उससे पहले भी इसकी कारकर्दगी खराब ही थी, और जब वो मिल गया तो उसके बाद तो बिल्कुल ही बेड़ा गरक हो गया इसका, बिल्कुल ही इम्तिहान इसने छोड़ दिया करना। ठीक है, यही मामला जो है वो हमारी इस जिंदगी का है कि अगर हम इस दुनिया के अंदर एप्रिसिएशन के लिए काम करते हैं ना, दुनिया की एप्रिसिएशन के लिए काम करते हैं ना, चाहे वो दीन के काम कर रहे हो, नमाजें पढ़ रहे हो, या कोई और दूसरे काम कर रहे हो दीनी, लेकिन हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर ही हमें उसके ऊपर वाहवा मिले, या हम उसके ऊपर जो है वो हमें अप्रिशिएट किया जाए, या उसके ऊपर हमें मदद किया जाए, और उसके ऊपर हमें जो है वो आसानियां पैदा की जाए हमारे लिए, तो इसका मतलब ये है कि हम जो कर रहे हैं ना, वो भी घटिया क्वालिटी का कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं दीन का काम या दीन की इबादतें, वो भी घटिया क्वालिटी की कर रहे हैं, बिल्कुल जिस तरीके से वो तालिबे इल्म जो है वो, उसकी तवज्जो जब तक पेप्सी के ग्लास के ऊपर थी, तो इवन जो वो कर भी रहा था ना काम, वो भी घटिया क्वालिटी का काम था। और ऐसा शख्स जो है, जब उसको दुनिया की अप्रिसिएशन मिल जाती है ना, तारीफ मिल जाती है ना, आसानियां मिल जाती है ना, तो अब उसकी तो बिल्कुल ही तवज्जो आखिरत की तरफ से 0 हो जाती है, और ये तो बिल्कुल ही इसका बेड़ा गरक हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या चाहते हैं कि शुरू से लेकर के आखिर तक हमारी तवज्जो जो है वो यौमिल आखिर तक, यौमल आखिर तक रहे, यौमल आखिर पर रहे हमारी तवज्जो, ठीक है ना, हर काम हम उसी के लिए करें। दुनिया में अगर पेप्सी के ग्लास मिल भी रहे हैं, तो उनको अपना अपनी कामयाबी ना समझे, उनको अपनी कामयाबी ना समझे, उसके ऊपर फूले ना समाए, ये ना समझे कि इम्तिहान खत्म हो गया हमारा, ठीक है, और अगर कोई और थप्पड़ थप्पड़ भी मिल जाए, तो उसके ऊपर भी ये ना समझे कि जी बस यही था, हमें सजा मिल गई, अब उसके बाद तो हमें मजीद सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अब बस वो मिल गई ना, थप्पड़ दो चार लोगों ने लगा दिया हमें, अब जो है वो आखिरत के दिन का सजा जो है ना, वो तो हमें नहीं मिलेगी, नहीं, आखिरत के दिन की जजा और सजा जो है ना, वो एक अलग ही चीज है, उसके लिए तो पूरे के पूरे शुरू से लेकर के आखिर तक जो आपने परफॉर्मेंस दी है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अनलेस ये कि आपने गलत कोई काम किया है, गलत परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो अब आप तौबा के इरेजर से उसको इरेज करें, तौबा के इरेजर से उसको इरेज करें, और फिर उसके बाद दोबारा से लिखना शुरू करें, फिर तो ठीक है, सही है, ये है दुनिया की हकीकत। ठीक है, तो वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन। अच्छा, दूसरी आयत में इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा बयान किया गया है कि हर नफे और नुकसान का मालिक दर हकीकत सिर्फ अल्लाह जल्ला शानहू है। कोई शख्स किसी को हकीकत के एतबार से ना अदना नफा पहुंचा सकता है, ना अदना नुकसान पहुंचा सकता है, छोटे से छोटा नफा भी, छोटे से छोटा नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, और जाहिर में जो किसी को किसी के हाथ से नफा या नुकसान पहुंचता नजर आता है, वो सिर्फ एक जाहिरी सूरत और हकीकत के सामने एक निकाब से जायद कोई हैसियत नहीं रखता। ठीक है, तो असबाब हैं जिनसे कि हमें ये फायदा पहुंच रहा है या नुकसान पहुंच रहा है, और ये असबाब जो है ना, ये क्या है कि हकीकत के सामने एक निकाब है, ये निकाब, निकाब क्या होता है, जिससे कि किसी चीज को छुपाया जाता है ना, तो ये जो जाहिरी असबाब होते हैं ना, ये अक्सर निकाब बन जाते हैं उस शख्स के लिए कि जिसकी आंखें खराब होती हैं, ठीक है ना, जिसकी आंखें खराब होती हैं। देखें, जिसको पहले ही धुंधला नजर आता हो, राइट, तो उसके सामने निकाब अगर आ जाए उसकी आंखों के सामने, तो उसका तो बिल्कुल ही विजन ब्लैक हो जाएगा ना। अगर काला निकाब है तो उसका पूरा का पूरा विजन ब्लैक हो जाएगा। लेकिन अगर उसको शार्प नजर आता हो तो निकाब अगर सामने आ भी जाए फिर भी उसको पीछे नजर आता रहेगा, है ना भाई। वैसे तो खवातीन जो है वो आमतौर पर ऐसा निकाब पहनती हैं कि जिसमें आंखें खुली हुई होती हैं, कोई आगे निकाब की वो झली नहीं होती है। लेकिन कुछ औरतें जो है वो इवन आंखों के ऊपर भी जो है वो झली डाल रही होती हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो, और वैसे भी आम है दुपट्टे के कपड़े का इसके जैसा वो निकाब होता है, ठीक है, तो देख लें उसके अंदर भाई उसके आर पार नजर आता है ना। लेकिन अगर पहले ही आप अंधे के करीब हों, अंधेपन के करीब हों, तो फिर तो आपको नहीं नजर आएगा उसके पीछे कुछ और, ठीक है। तो यही मामला हमारा और जो हकीकत शनास लोग हैं उनका ये मामला है कि वो अंधे नहीं होते, तो इस वजह से उनके सामने अगर असबाब आ भी जाते हैं ना तो भी उनको पीछे नजर आ रहा होता है कि हाँ भाई ये तो असल में अल्लाह है जो ये काम कर रहा है, असबाब पे थोड़ी ये काम कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे पहले ही अंधे, राइट, बने हुए हैं, हमारे माँ बाप ने हमें अंधा बनाया, फिर उसके बाद हमारे तालीमी निज़ाम ने हमें अंधा बनाया, फिर उसके बाद जो है वो मीडिया जो है वो बाकी मानदा अंधापन जो है वो उसको भी कामिल कर देता है, और फिर हमारी अकल जो है वो इतनी खराब हो जाती है इन सब चीज़ों के बाद कि अक्सर तो है वो ना वो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स बन जाते हैं, पैथोलॉजिकल इश्यूज हमारे साथ क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर इस वजह से हम जो है ना वो बस कोई असबाब आ जाए हमारे सामने फिर तो बिल्कुल ही हम अंधे हो जाते। तो ऐसे लोगों के लिए जो है ना वो खैर किसके अंदर है कि असबाब ना हो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, असबाब ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि असबाब के ना होने के ऊपर थोड़ा थोड़ा तो फिर भी नजर आता है, यानी निकाब ना हो तो फिर भी थोड़ा थोड़ा नजर आता है ऐसे अंधे इंसान को, ठीक है। तो फिर तो निकाब का ना होना ज्यादा बेहतर है ना, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे बन जाएं अल्लाह ताला से दुआएं मांग करके कि अल्लाह असबाब को मेरे सामने जो है ना वो मेरे अंधेपन का सबब ना बना दीजिएगा, मेरे अंधे सबब अंधेपन के बढ़ने का सबब ना बना दीजिएगा, मुझे आप असबाब भी अता फरमा दें और साथ साथ जो है ना वो मुसब्बिबुल असबाब तक मेरी निगाह भी पहुंचा दें, अल्लाह ताला से दुआ करे बंदा, तलब दिखाए अल्लाह ताला को, तो फिर कोई मसला नहीं होता, फिर अल्लाह ताला असबाब देते हैं, ठीक है ना, फिर अल्लाह ताला असबाब भी दे देते हैं। आपने जो रोमन में इतना लंबा लिखा है ना, सॉरी मैं नहीं पढ़ सकता क्लास के अंदर इसको, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा मुझे इस रोमन को इंटरप्रेट करने में, या तो उर्दू में लिखें या फिर मुख्तसर जवाब सवाल लिखें। तो कहते हैं कि कोई शख्स किसी को हकीकत के एतबार से ना अदना नफा पहुंचा सकते हैं ना अदना नुकसान। आगे चलते हैं, ये फारसी का शेर है और आपको पता ही है कि उसको फारसी नहीं आती है, तो अब टाइम नहीं मिला, दिल में था कि उसका कहीं से ट्रांसलेशन करके देखें लेकिन मौका नहीं हो सका। आगे चलें कि ये अकीदा भी इस्लाम के इन इनकलाबी अकायद में से है कि जिसने मुसलमानों को सारी मखलूक से बेनियाज और सिर्फ खालिक का नियाजमंद बनाकर उनकी एक ऐसी बेमिसाल अलबेली जमात तैयार कर दी, ऐसी बेमिसाल और अजीब व गरीब किस्म की जमात तैयार कर दी जो फक्र व फाका और तंगदस्ती में भी सारे जहान पर भारी, ठीक है, फक्र व फाका और तंगदस्ती, यानी इनके पास जो है ना वो दुनियावी असबाब कम ही रहते हैं ईमान वालों के पास, ठीक है। हम जो है वो अपने हजरत से बातचीत हो रही थी, आए हुए थे यहाँ पर, तो हमने कहा ऐसे ही, तो पहले से सारी बातें पता है लेकिन बस होता है ना बहाना बात करने का है, लेकिन भाई कुछ बात हो तो फिर हमारे भी दिल को ठंडक पहुंचे, तो बस ऐसी बहाना बात करने का मौका जब देखते हैं कि हजरत अच्छे मूड में हैं और बात करने के मूड में हैं तब जो है वो कोई बात करते हैं, वरना तो खामोशी भाई, वरना तो हिम्मत नहीं होती बात करने की। तो बहरहाल हमने कहा कि हजरत यहाँ पे जो है ना वो सऊदी अरब के अंदर जहाँ हम रहते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ जो हैं वो चलती हैं जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी गाड़ियाँ होती हैं, सबसे ज्यादा महंगी। हमने बचपन में कहीं पे पढ़ा था वो रोल्स रॉयस जो है ना वो सबसे महंगी गाड़ी होती है, मुझे नहीं पता वो वाकई होती है कि नहीं होती है, लेकिन उस वक्त तो पढ़ा था कहीं पे। तो यहाँ पे वो रोल्स रॉयस जो है ना वो भी ऐसी बड़ी वाली रोल्स रॉयस के, छोटी मोटी रोल्स रॉयस नहीं चलती, बड़ी वाली रोल्स, और इतनी सारी चलती हैं। हमने कहा हजरत जैसे जैसे हमारे यहाँ टैक्सियां भी नहीं चलती है ना उस तरह से यहाँ पे रोल्स रॉयस चलती है, बस कहने का एक वो मुहावरतन क्या था। तो फिर कहा कि अगर इनमें से एक रोल्स रॉयस जो है ना वो अगर बेच करके पाकिस्तान के मदरसों के ऊपर जो है ना वो उसके पैसों को डिवाइड कर दिया जाए ना, तो हर मदरसे का जो यानी जो माली तंगी है ना और माली मसले है ना वो सब हल हो जाए, पाकिस्तान के सारे मदरसों के माली मसले हल हो जाए शायद एक गाड़ी के बेचने के बाद इतनी रकम मिले, ठीक है। लेकिन देख लें, ये कहने को ये भी मुसलमान ही है, राइट, कहने को ये भी जो है वो रोल्स रॉयस वाले भी है ना, कभी मस्जिद के बाहर जो है वो गाड़ी पार्क करके अंदर आ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है, तो मुसलमान ही है ना, हत्ता कि नमाज वमाज भी पढ़ लेते हैं। लेकिन इसकी तौफीक नहीं है कि दीन की और सही दीन की हिफाजत की जहां पे मेहनत हो रही है वहां पे अपना पैसा लगाए, राइट। वो गाड़ी पे पैसा लगाया हुआ है और गाड़ी जो है ना वो पता नहीं क्या समझते हैं जैसे जन्नत में पहुंच गए। भाई गाड़ी तो बहरहाल इतनी छोटी सी चीज है, उसके अंदर तो अभी तक तो ये उड़ भी नहीं सकते उस गाड़ी के अंदर, राइट, अभी तक तो ये फ्लाइंग रोल्स रॉयस तो आई नहीं है, उड़ भी नहीं सकते उसके अंदर। अच्छा, ये गाड़ी ऐसी भी नहीं होती कि अगर बाहर 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ रही हो तो ये गाड़ी जो है ना वो ऐसी हो कि इस गाड़ी से आप डायरेक्ट जो है ना वो अपने कमरे की एसी में पहुंच जाए, नहीं, गाड़ी से उतरना ही पड़ेगा, गर्मी में आना ही पड़ेगा। अभी तक तो हमने कोई ऐसा महल के बारे में नहीं सुना कि गाड़ी से डायरेक्ट जो है ना वो आपके कमरे के अंदर वो गाड़ी पार्क होती हो, ठीक है ना। बहरहाल रियाज की गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस की होती है, उसमें तो आपको निकलना ही पड़ेगा अंदर, जितना ही अच्छा कंफर्टेबल आपने माहौल बनाया हुआ, ठीक है ना। और क्या है मतलब, गाड़ी में बाथरूम तो अभी तक नहीं है कि जब आपको बाथरूम लगेगा तो फिर आपको इस गाड़ी से बाहर ही निकलना पड़ेगा, इसके अंदर तो आप जाकर के ये काम नहीं कर सकते। तो इतनी महंगी चीज जो है वो उसकी भी इतनी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, लेकिन उसी को जो है वो जन्नत समझ करके लगता है जैसे सारी कामयाबियां मिल गई, नाउज बिल्ला फौजुल मुबीन मिल गया ऐसी गाड़ी मिलने से, ठीक है। लेकिन अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए थोड़े थोड़े हमारे मौलवी लोग हैं माशाल्लाह, हमारे उलमाए कराम, हमारे जो है वो तुलबाए कराम जो हैं, किसी के जो है वो चार आने की, इनके मुकाबले में वो कहते हैं चार आने की किसी की जरूरत है, किसी के जो है वो अठन्नी की जरूरत है, किसी के जो है वो रुपये की जरूरत है, राइट, और उनके अंदर जो है मदरसा जो है वो माशाल्लाह चलता रहता है, राइट। मदरसा दीन की असल हिफाजत का काम जो अल्लाह ताला के कुरान और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका की जो मेहनत का काम है चल रहा है, और उसमें कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, वही छोटी छोटी तनख्वाहों वाले या छोटे छोटे जो है वो बिजनेस वाले, वो सारा का सारा उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वही जो है वहां पे अपना पैसा लगाते हैं, वही वहां पे देते हैं। ये अल्लाह की तौफीक से होता है, ये अल्लाह की तौफीक से होता है। अल्लाह की तौफीक नहीं होती है ना तो माल असबाब के अंबार भी लग जाएं लेकिन वो खैर के कामों में खर्च नहीं होते, खैर के कामों में खर्च नहीं होते, ठीक है। और अल्लाह की तौफीक होती है तो मेहनत मजदूरी करके भी अगर कोई चंद पैसे भी कमाता है ना, अल्लाह ताला उसको भी अपने खैर के कामों के अंदर कबूल फरमा लेते। ये हमारे हमारा कमाल नहीं है, ये अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह ताला का कमाल है, ठीक है। तो सहाबा कराम की जमात ऐसी थी कि उनके पास कुछ भी नहीं था, हालांकि उस जमाने में भी रोल्स रॉयस के मुतबादल जो चीजें थी ना वो रोमन्स और पर्शियंस के पास उस जमाने में भी सारी चीजें मौजूद थी, ठीक है ना, बस ज्यादा से ज्यादा मोटर इजाद नहीं हुई थी, बाकी तो सारी नेमतें उन लोगों के पास मौजूद थी। तो वो फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों को इन सब के ऊपर जो है भारी कर दिया, ठीक है, और सारे जमाने में ऐसे ही होता रहा है और आइंदा भी ऐसे ही होगा। तो किसी के सामने सर झुकाना नहीं जानती, फकर में भी मैं सर बसर फखरो गुरूर व नाज हूं, किसका नियाज मंद हूं सबसे जो बेनियाज हूं, ठीक है ना। ये जो बेनियाजी की सिफत है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इन बंदों को भी अता फरमा दे, ठीक है ना। तखल्लकू बे अखलाकिल्ला, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि अपने आप को अल्लाह के अखलाक से मुजयन कर। तो भाई बेनियाजी, राइट, कि किसी की फिक्र इस तरह से, यानी फिक्र खैरख्वाही वाली फिक्र की बात नहीं हो रही, बल्कि कि वो मेरी कब मदद करेगा और मुझे उसकी भी जरूरत है और मुझे उसकी मदद की जरूरत है, नहीं, इस्तगना इस्तगना, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मुझे तो अल्लाह की मदद की जरूरत है बस, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला जो बेनियाज है कि अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं ना, तो उसी तरीके से जो अल्लाह वाले होते हैं ना वो भी फिर बेनियाज हो जाते हैं, वो भी बेनियाज हो जाते, ठीक है, उनको दुनिया वालों की मदद की जरूरत नहीं होती, उनकी निगाहें जो है ना फिर भीड़ के ऊपर नहीं लगी होती कि कि भीड़ आएगी और लोग आएंगे तो फिर बात बनेगी तो फिर काम होगा। नहीं, वो अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह का काम करते हैं, चाहे लोग आए चाहे ना आए। कुरान मजीद में जा बजा ये मजमून मुख्तलिफ उनवानात के साथ बयान फरमाया गया है। एक आयत में इरशाद है, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा फला मुमसिका लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादी। यानी अल्लाह ताला ने जो रहमत लोगों के लिए खोल दी उसको कोई रोकने वाला नहीं है, और जिसको वो रोक दे उसको कोई खोलने वाला नहीं। ये है तौहीद। सही अहादीस में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में अक्सर ये कहा करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुअतिया लिमा मनअता वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। ठीक है, यानी ए अल्लाह, जो आपने दिया उसको कोई रोकने वाला नहीं है, और जो आपने रोक दिया उसका कोई देने वाला नहीं है, और किसी कोशिश वाले की कोशिश आपके मुकाबले में नफा नहीं दे सकती। नबी अलैहिस्सलाम इस दुआ को नमाजों के बाद जो है वो मांगा करते थे, या इसको पढ़ा करते थे, या इसका इजहार किया करते थे, इस हकीकत का। ठीक है, कि ए अल्लाह, जिसको आपने दे दिया, जो आपने दे दिया कोई इसको रोकने वाला नहीं है। तो नमाज के बाद जो मसनून अस्कार है ना, जिनको हम तो बगैर मानी समझे हुए और जो है वो रूटीन में पढ़ भी लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं, बड़ी बात है। ठीक है, वरना तो पढ़ना भी याद नहीं रहता। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम इसको बतौर हकीकत के, जो कि नबी अलैहिस्सलाम के दिल में पैवस्त हुई हुई थी, उस हकीकत का इजहार जुबान से किया करते थे, जिसको वो हकीकत माना करते थे। ठीक है, हमें भी चाहिए कि हम कम से कम इतनी छोटी छोटी जो दुआएं हैं ना, उनको मानी उनका समझ लें, एक एक लफ्ज का मानी समझ लें, और जैसे उर्दू में हम मांगते उसी तरीके से हम अरबी में, जैसे कि उर्दू और अरबी जो है वो हमारे लिए बराबर हो गई। ठीक है, तो इतनी अरबी जो है ना, कि जिससे कि इन छोटी छोटी दुआओं के मानी समझ में आ सकें और मानी के इस्तेहजार के साथ उनको पढ़ा जा सके, इतनी अरबी सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत के तहत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से नकल किया है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सवारी पर सवार हुए और मुझे अपने पीछे रदीफ बना लिया। यानी सवारी पर जो पीछे बैठा हुआ होता है ना, उसको रदीफ कहते हैं अरबी के अंदर। कुछ दूर चलने के बाद मेरी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया कि ए लड़के, या गुलाम, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रतान जो है वो लड़के थे, छोटे कजन थे नबी अलैहिस्सलाम के, तो ए लड़के, मैंने अर्ज किया, हाजिर हूं, लब्बैक या रसूलुल्लाह, क्या हुक्म है, फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुमको याद रखेगा। ठीक है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। कल हमारे हजरत ने भी जो एतकाफ़ का बयान था उसके अंदर फरमाया था ना, फज़कुरूनी अज़कुरकुम का क्या मतलब होता है, कि तुम अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुमको याद रखेगा। तुम अल्लाह को याद रखोगे तो उसको हर हाल में अपने सामने पाओगे। ठीक है, एहफ़ज़ुल्लाह, ये जो अल्लाह को याद रखो के, अगर ये वो वाली हदीस है, वैसे तो वो वाली हदीस में थोड़े से डिफरेंट अल्फाज भी हैं आगे जा करके, लेकिन इसी तरह का अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रतान जो है सवारी में बैठे हुए थे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या गुलाम, एहफ़ज़ुल्लाह, यहफ़ज़ का एहफ़ज़ुल्लाह, अल्लाह की हिफाजत करो। क्या मतलब, अल्लाह को हमारी हिफाजत की जरूरत है, क्यों फरमा रहे हैं अल्लाह की हिफाजत करो? मतलब था अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत करो, राइट, अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, यहफ़ज़ुकुम। ठीक है, अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, यहफ़ज़ का, कि वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। ठीक है, तुम्हारे हुक्मों की हिफाजत, तुम अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारे हुक्मों की हिफाजत करेगा। हाँ, ऐसा भी है कि तुम अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारे हुक्मों की हिफाजत करेगा, तुम्हारी जान की हिफाजत भी हिफाजत करेगा, तुम्हारी इज्जत की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारे माल की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारी औलाद की भी हिफाजत करेगा, और तुम्हारे हुक्म की भी हिफाजत करेगा। क्या मतलब, कि जब तुम अपने नीचे वालों को हुक्म दोगे तो अल्लाह ताला उनको तुम्हारी बात मानने की तौफीक देगा। ठीक है, तो औलाद जो है ना, ये इसका दीनदार बनना और नेक बनना जो है ना, ये एक निशानी है इस बात की कि हाँ ये साहब जो हैं ये अल्लाह ताला के हुक्मों की हिफाजत करते हैं, ये अल्लाह ताला के हुक्मों की हिफाजत करते हैं, सिर्फ ऊपर से ढोंग नहीं रचाया हुआ इन्होंने बल्कि वाकई में हिफाजत करते हैं। अच्छा तो एहफ़ज़ुल्लाह यहफ़ज़ का ए लड़के, तुम अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुमको याद रखेगा। तुम अल्लाह को याद रखोगे तो उसको हर हाल में अपने सामने पाओगे। तुजाहिद क्या है वो, तुजाहा का तुजाहा, या कि अपने सामने पाओगे उसको, यानी अल्लाह ताला को अपना मदद करने वाला पाओगे। ठीक है, तुम अल्लाह को याद रखोगे यानी उसके हुक्मों की हिफाजत करते रहोगे, उसकी तरफ अपना ध्यान रखोगे, अपनी निगाहों को उसके ऊपर मरकूज करके रखोगे बजाय इसके के मखलूक के ऊपर अपनी निगाहों को मरकूज कर दो, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करता रहेगा, तुम्हारे साथ शामिल हाल रहेगा, अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी। तुम अमन व आफियत और खुश ऐशी के वक्त अल्लाह ताला को पहचानो तो तुम्हारी मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला तुमको पहचानेगा। पहचानेगा से मतलब रिकग्नाइज करना नहीं, बल्कि तुम्हें याद रखेगा। वही जैसे कल हजरत ने फरमाया था, हम किसी को कहते ना यार मेरे बेटे को इंटरव्यू के वक्त याद रखिएगा, यानी इसको कामयाब कर दीजिएगा इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, तो अल्लाह ताला इस तरीके से मेहरबानी फरमाते हैं। जब तुमको सवाल करना हो तो सिर्फ अल्लाह से सवाल करो, और मदद मांगनी हो तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। जो कुछ दुनिया में होने वाला है इल्म तकदीर उसको लिख चुका है, कलम तकदीर उसको लिख चुका है। अगर सारी मखलूकात मिलकर उसकी इसकी कोशिश करें कि तुमको ऐसा नफा पहुंचा दें जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे हिस्से में नहीं रखा, तो वो हरगिज ऐसा ना कर सकेंगे। और अगर वो सब मिलकर इसकी कोशिश करें कि तुमको ऐसा नुकसान पहुंचा दें जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तो हरगिज उस पर कुदरत ना पाएंगे। ठीक है, अगर तुम कर सकते हो कि यकीन के साथ सब्र पर अमल करो तो ऐसा जरूर कर लो, अगर इस पर कुदरत नहीं तो सब्र करो, क्योंकि अपनी खिलाफ तबा चीज दिल पर सब्र करने में, अपनी खिलाफ तबा चीजों में चश्मे जो है ना वो बहुत ही, अपनी खिलाफ तबा चीजों पर सब्र करने में बड़ी खैर व बरकत है। और खूब समझ लो कि अल्लाह ताला की मदद सब्र के साथ है, और मुसीबत के साथ राहत और तंगी के साथ फराखी है। इन्ना मअल उस्र युसरन, इन्ना मअल फइन्ना मअल उस्र युसरन, फइन्ना मअल उस्र युसरन, इन्ना मअल उस्र युसरन। ठीक है, कि मुसीबत के साथ आसानी है, तंगी के साथ फराखी है, अल्लाह ताला ने दोनों चीजें साथ में रखी हैं, लेकिन अल्लाह ताला का की सुन्नत क्या है कि फराखी का वक्त जो होता है वो ज्यादा होता है और तंगी का वक्त जो होता है वो कम होता है। मुसीबत का वक्त जो है वो कम होता है और आसानी का वक्त जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, सिवाय उस बंदे के लिए कि जिसने अपना अपने आंखों के ऊपर जो लेंस लगाया हुआ है ना, उस लेंस में रिवर्स किस्म का वो लेंस हो। रिवर्स लेंस का क्या मतलब है कि जो मुसीबत है उसको ये आसानी समझता हो, जो आसानी है उसको ये मुसीबत समझता हो। ठीक है, तो फिर क्या होगा उस वक्त, ये होगा कि जो आसानी का वक्त होगा ना, जो लंबा आसानी का वक्त होगा उसको ये मुसीबत समझ रहा होगा, और जो मुसीबत का वक्त होगा जो कि थोड़ी देर का, तो उसको जो है ना ये आसानी का वक्त समझ रहा होगा। अब जाहिर है जब ऐसा लेंस किसी ने लगाया हुआ है तो फिर तो वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करेगा ना कि आप कह रहे हैं कि मुसीबत का वक्त जो है वो थोड़ा होता है और आसानी का वक्त जो है वो ज्यादा होता है, मैंने तो उल्टा देखा है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। तो भाई आपका लेंस ऐसा है, ठीक है ना, और ये लेंस का मतलब क्या होता है, लेंस का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने वाकई जो है वो कोई फिजिकल लेंस अपनी आंखों के ऊपर पहना हुआ होता है, बल्कि क्या होता है मसला, लेंस रिवर्स लेंस पहनने का मतलब क्या है हकीकत में, इसका क्या मतलब है, रिवर्स लेंस पहना हुआ होता है, इस वजह से वो कुछ को कुछ और कुछ को कुछ समझ रहा होता है, मुसीबत को राहत समझ रहा होता है, राहत को मुसीबत समझ रहा होता है। जी चले, इसका जवाब दे दें तो फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी पता नहीं 50 मिनट से जो है वो सुने चले जा रहे हैं। तो रिवर्स लेंस पहनने की हकीकत क्या है? वाकई में तो किसी ने ऐसा लेंस या ऐसा चश्मा तो नहीं पहना हुआ होता कि जिसमें राहत मुसीबत नजर आ रही होती है और मुसीबत जो है वो राहत नजर आ रही होती है। देखने का नजरिया, अकल पर पट्टी, दजल। ऐसे रिवर्स लेंस पहनने का क्या मतलब होता है? दजल तो ये है, लेकिन किसी ने ऐसा रिवर्स लेंस पहनना पहना हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, लाइल्मी। ये सही जवाब है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है जहालत। इसका मतलब क्या होता है? जहालत। रियलिटी इसकी क्या है? लाइल्मी, जहालत। ठीक है, तो जो जाहिल रहेगा, जो लाइल्म रहेगा, तो फिर उसके साथ ऐसा ही होगा। वो राहत को मुसीबत समझ रहा होगा, मुसीबत को राहत समझ रहा होगा। ठीक है, तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो वही हमारे दीन की पहली नाजिल फरमाई ना, उसके अंदर फरमाया इकरा, पढ़ो। ठीक है, तो जहालत दूर करो। पढ़ने का मतलब खाली है नहीं, उनके जहालत दूर करो। सही है, उसके लिए फिर वो फिक्र की तब्दीली भी, जहालत दूर होने से फिक्र की तब्दीली भी आती है। बिलीविंग इन द सिस्टम ऑफ द कुफार, ये भी जो है वो जहालत के दूर होने से फिर ये बिलीफ जो है वो खत्म होता है, हकीकत सामने खुलती है। दजल से भी इंसान उसी वक्त निकलता है जब उसकी ऊपर हकीकत वाजे होती है। वो हकीकत कैसे वाजे होती है? इल्म से वाजे होती है। ठीक है, बस मकसद मसला सारा का सारा ये है कि शैतान ने इल्म की तारीफ भी बदल दी। दजल को दूर करने वाला जो इल्म था, उसको जो है वो उसने कहा कि नहीं, ये तो बेवकूफी है, ये तो टाइम का जाया करना है। और उसने इल्म किस चीज को बना दिया? इल्म बना दिया जो स्कूल कॉलेज में जा करके जो है वो यूनिफॉर्म पहन करके, या फिर बगैर यूनिफॉर्म के भी, अमेरिका का स्कूल होगा तो बगैर यूनिफॉर्म के होगा, तो वहां पे जा करके जो है ना, वो जो आप जो आपका टीचर साहब पढ़ाता है ना, जो वो किताबें लेकर के, जो वो वाला जो इल्म होता है ना, वो है इल्म, वो है इल्म। उसी से तुम्हारे जो है वो लाइल्मी दूर होगी, उसी से तुम्हारे जो है वो फिक्र की तब्दीली आएगी, उसी से तुम्हें जो है वो ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो इल्म की तारीफ भी बदल दी। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें इल्म की अपनी तारीफ को दुरुस्त करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक, अफसोस है आगे। हजरत लिखते हैं कि ये सब तो बहरहाल बहुत सारी तशवीश के ऊपर की जा सकती है, जो नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को नसीहत करी, लेकिन लुबे लुबाब इन सब का यही है कि हकीकत अल्लाह ही के हाथ में है, सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में है। असबाब जो है वो कुछ कर नहीं सकते, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो अल्लाह ने तय कर दिया है वही है। तो हम अल्लाह ही के साथ राजी रहें, अल्लाह ही के ऊपर फोकस करें, और इसको हम सीखें। ठीक है, इसको हम सीखें कि कैसे किया जाता है। अफसोस है कि कुरान के इस वाज़ह ऐलान और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र भर की तालीमात के बावजूद ये उम्मत, ठीक है, ये उम्मत यानी हम और आप, फिर इस मामले में भटकने लगी। सारे खुदाई इख्तियारात मखलूकात को बांट दिए, खुदाई इख्तियारात जो है वो मखलूकात को बांट दिए। ठीक है ना, अब मखलूक के अंदर ही फंसे हुए, जैसे इंसान को खुदा के साथ जो है वो एंगेज रहना चाहिए था, हम मखलूक के साथ एंगेज वैसे रहते हैं। यकीन के साथ सबर, और वैसे सबर इसका क्या मतलब होगा? हाँ, यहाँ पे क्या आवाज थे? अच्छा, अगर तुम क्या रखा, और अगर वो सब मिलकर इसकी कोशिश करें कि तुमको ऐसा नुकसान पहुंचाएं जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तो हरगिज इस पर कुदरत नहीं पाएंगे। अगर तुम कर सकते हो कि यकीन के साथ सब्र पर अमल करो, तो ऐसा जरूर करो। अगर इस पर कुदरत नहीं, तो सब्र करो। ठीक है, क्या मतलब है इसका? यकीन के साथ सब्र पर अमल करो, तो ऐसा जरूर कर लो, और अगर इस पर कुदरत नहीं, तो सब्र करो। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, उन्हें साजिश के तो जहन से ही निकल गया था। ठीक है, क्या मतलब है इसका? यकीन के साथ सब्र पर अमल करो तो ऐसा जरूर कर लो, और अगर उस पर कुदरत नहीं तो सब्र करो। ठीक है, अगर आप में से कोई इसके ऊपर तब आजमाई करे, क्या मतलब है इसका? बड़ा आसान सा मतलब है वैसे इसका, लेकिन देखते हैं इन दोनों में क्या फर्क है। यकीन के साथ सब्र पर अमल करो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सब्र कर लो। अगर कोई अल्फाज हदीस से जवाब दे तो फिर तो बात ही क्या। हदीस मुबारक के अंदर बिल्कुल इसी के ऊपर अल्लाह से, जिन्होंने जवाब दिया है मर्दों में, अल्लाह से राजी होकर सबर कर, तो बाकी सबर जो है अल्लाह से नाराज होकर के करना है। अल्लाह से नाराज होकर के तो सबर नहीं होता भाई, सबर तो अल्लाह से राजी ही होकर के होता है। यकीन के साथ करने से अजर मिलेगा। नहीं, अजर तो उस पर भी मिलेगा। एक्सेप्टिंग दैट समथिंग इज बैड इन द हार्ट इफ नॉट बाई हैंड और बाई टंग। नहीं, ये तो नहीं। हदीस जिब्राइल आ गया, हदीस जिब्राइल मल इस्लाम, मल ईमान, और फिर आखिर में क्या है, मल एहसान। ठीक है ना, नबी अलैहि सलाम से जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूछा कि इस्लाम क्या है, आपने बता दिया कि ये पांच जो है ना, ये काम, ये पांच पिलर्स जो हैं अरकान, ये इन पे अमल करना है, इस्लाम है। फिर उसके बाद फरमाया मल ईमान, ठीक है, तो वो बता दिया। फिर आखिर में फरमाया मल एहसान, तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु व इन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। ठीक है, कि तुम अल्लाह ताला को की इबादत ऐसे करना कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे तो कम से कम इतना तो दिल में ख्याल रखो ना कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ठीक है ना, यही फर्क है, यही मामला है यहां पर भी। यकीन के साथ सबर करना कि बिल्कुल दर्जे एहसान में जा करके सबर करना कि अल्लाह से राजी खुश, और जो है ना वो यानी हकीकत तुम्हें समझ में आ रही है कि देखो मेरे ऊपर जो मुसीबत आ रही है ये असल में राहत है, ये अल्लाह तआला की तरफ से जो है ना ये तो बड़ी जबरदस्त काम हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, कि मुझे इस मुसीबत में अल्लाह ताला ने मुब्तला किया हुआ है और मुझे अल्लाह ताला ने रजा की तौफीक अता फरमा दी है, मैं इसके ऊपर अल्लाह से राजी हूं, और मुझे जो है वो उसकी हकीकत भी समझ में आ रही है कि मेरे ऊपर क्यों ये मुसीबत आई हुई है। लेकिन अगर तुम्हें हकीकत नहीं भी समझ में आ रही फिर भी जो है वो सब्र करो, और यही सोचो कि ये अल्लाह की तरफ से, ये मेरे रब की तरफ से। इसको कहते हैं दूसरे अल्फाज में, दो अल्फाज में इसको कहते हैं कि तौअन औ करहन। बंदगी तो हमें हर सूरत करनी है, तौअन करनी है या करहन करनी है। तौअन का मतलब ही यही है कि खूब जो है ना वो खुशी और रजा और जो है वो बड़े जबरदस्त कैफियत के साथ जो है अल्लाह की बंदगी करनी है, लेकिन अगर कैफियत नहीं भी है तो भी करनी तो है, अपने आप को मार के करनी है, अपने आप को मजबूर करके करनी है। ठीक है, तो वही मामला है कि अगर यकीन के साथ सबर करो। यकीन किसको कहते हैं, यकीन का मतलब होता है कि व्हेन यू आर एक्चुअली एबल टू सी समथिंग, मुशाहिदा, मुशाहिदा जब किसी चीज का मिल जाए ना उस हालत को यकीन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कयामत के बारे में ईमान वालों का, वबिल आखिरत हुम यूकिनून, राइट, जहां पे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, वहां पे मोमिनीन को अल्लाह ताला ने डिफाइन किया है। ठीक है ना, ये करते हैं वो, आखिर में क्या फरमाया, वबिल आखिरत हुम यूकिनून, आखिरत के ऊपर उनका यकीन होता है, जैसे कि वो मुशाहिदा कर रहे हैं आखिरत का। ठीक है ना, वहां पे तो यूमिनून का भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि हाँ भाई कहा था उन्होंने तो मान लिया बस, नहीं, यू कानून, मुशाहिदा। ठीक है, तो ऐसे सबर करो। लेकिन अगर इस पर तुम्हें कुदरत नहीं है, यानी इफ यू आर नॉट देयर येट, इफ यू आर नॉट देयर येट, अभी तुम उधर नहीं पहुंचे हो ना, कोशिश तो करो, दुआएं तो मांगो, अल्लाह मुझे एहसान की कैफियत अता फरमा दे, लेकिन अभी उधर पहुंचे नहीं, अभी अल्लाह ताला का फैसला नहीं हुआ तुम्हारे लिए, फिर भी सबर कर लो, ठीक है? तो नहीं, फिर अगला पैराग्राफ इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Recording stopped.